وما يستوي العمى والبصير، اور دیکھو برابر نہیں ہوتے اندھا اور دیکھنے والا۔ یہ کس کی مثال دی گئی ہے؟ یہ مثال ہے مومن کی اور کافر کی۔ مومن ہے جو دیکھنے والا ہے، اس کو اللہ کا نور مل گیا، ایمان مل گیا، قرآن مل گیا جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی بات پڑھی ہوئی ہے، جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے۔ اور اندھا کون ہے؟ جس کے پاس بینائی نہیں، جو اندھیروں میں ٹکرے مارتا پھرتا ہے۔ کبھی بھی کفر کو ایمان پر پسند نہ کریں، بہت فرق ہے ایمان اور کفر میں، بہت فرق ہے۔ جیسے اندھے اور دیکھنے والے میں بہت فرق ہے، اسی طرح ایمان اور کفر میں بہت فرق ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندے کو راستہ نظر آ رہا ہو، اس راستے پہ سیدھا چل سکتا ہے، اور دوسرا کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر ٹکر کھاتا ہے، کبھی ادھر ٹھوکر کھاتا ہے؟ کیا فرق لگتا نہیں ہے اندھے اور دیکھنے والے میں؟ اسی طرح کافر اور مومن میں۔ اور اگر آپ کو کہیں کافر اور مومن، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں، اس میں کوئی فرق ہی نظر نہ آئے، اس کا مطلب اس کو بھی بینائی نہیں ملی۔ ولا ظلمات ولا نور، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، اندھیرے اور روشنی کتنا فرق ہے۔ کون ہے جو اندھیروں میں رہنا چاہتا ہو؟ کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا، ہر کوئی چاہتا ہے روشنی ملے۔ روشنی کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ ایمان ہے، قرآن ہے، علم ہے، اس کے ذریعے انسان دیکھتا ہے۔ قرآن کا علم نہ ہو تو اندھیرے ہی ہیں نا، پھر جہالت کے اندھیرے، غفلت کے اندھیرے، ماحول کے اندھیرے ہوتے ہیں۔ ان سے نکال کے یہ ایمان، یہ قرآن، یہی نور میں لاتا ہے۔ نور یہ ہیں۔ جیسے تم اندھیروں میں نہیں رہنا چاہتے فزیکلی، اسی طرح جہالت کے اندھیروں میں بھی نہ رہو۔ تو ایمان والا اس نور سے، اس قرآن کے نور سے دیکھتا ہے، واقعی اس کے معاملات فرق ہو جاتے ہیں، اس کی پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں، اس کی خواہشات بدل جاتی ہیں، اس کی چیزوں کو دیکھنے کی نظر ہی بدل جاتی ہے۔ آپ کو لگتا نہیں؟ جب آپ اندھیرے میں تھے تب کیسا تھا، اور نور میں آئے تو تب کیسا ہے؟ فرق لگتا ہے نا۔ ولا ظل ولا حرور، اور نہ ہی سایہ اور نہ ہی دھوپ۔ آپ دیکھیں سخت گرمی کا دن ہو تو دھوپ اور سائے میں فرق ہے نا، ایک ٹھنڈی چھاؤں، گھنی چھاؤں، اور دوسرا تپتی دھوپ جس میں پیر بھی نہ رکھا جا سکے۔ اسی طرح حق اور باطل ہیں، اسی طرح ایمان اور کفر ہیں۔ ایمان میں سکون ہے، وہ ٹھنڈی چھاؤں ہے، اور کفر میں بے چینی ہے، باطل میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، تکلیف ہے۔ جیسے یہاں پہ دنیا میں ایک سایہ ہے اور دوسرا دھوپ ہے نا، اسی طرح قیامت کے دن بھی ایک جنت ہوگا اور ایک جہنم ہوگی۔ ایک جنتوں میں ہوگا، دوسرا جہنموں میں ہوگا۔ تو سائے کے نیچے انسان آ کے سکھ کا سانس لیتا ہے، اس کو کتنا سکون ملتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے۔ اسی طرح ایمان بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور برابر نہیں ہو سکتے زندہ اور نہ مردہ۔ ایک میں زندگی ہے، حیات ہے، ایمان جو ہے وہ حیات ہے، وہ حرارت ہے، اور کفر جو ہے وہ موت ہے، موت۔ یعنی وہ چاہے وہ چل پھر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اٹھ بیٹھ رہا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن وہ زندہ لاشیں ہیں بس۔ تو ایمان والا اور کافر تو برابر ہو ہی نہیں سکتے، دونوں کا مزاج الگ، کردار الگ، اخلاق الگ، عقیدہ الگ، عمل الگ، زندگی الگ، تو پھر انجام کیا سیم ہوگا؟ انجام بھی الگ ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اندھا جو ہے نا، جس نے دنیا نہیں دیکھی، اس کو بینائی نہیں ملی، وہ تو دنیا میں آیا نہ آیا ایک برابر ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس بارے میں نا، اندھے کے بارے میں، کہ اس کا تو آنا نہ آنا دنیا میں برابر، اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تو واقعی اسی طرح جو جہالت کے اندھیروں میں ہوتا ہے، جو اندھا ہوتا ہے علم سے، جس کے پاس علم نہیں نہ ہوتا، وہ دنیا میں آیا یا نہ آیا برابر ہے۔ جس نے قرآن کی لذت کو نہیں جانا، وہ دنیا میں آیا نہ آیا برابر، چاہے ساری دنیا گھوم لے اور علم لے لے۔ ان اللہ یسمی من یشاء، اللہ تعالیٰ سنواتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی سنوا دے، इसलिए कि सुनने से हक का दरवाज़ा खुलता है, दिल के दरवाजे खुलते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह जिसको चाहे सुनवा दे। सुनवाना ये यानी दिल के अंदर किसके बात चली जाए, कौन ध्यान दे दे और कौन बहाने बनाए और कौन इधर उधर की तावीलें दे दे, सुन के भी अनसुनी कर दे। कई लोग होते हैं ना, उनको कितना भी सुनवाओ, आप कितना भी कन्विंस करो, उनके पास तावीलें हैं। तो ये तो अल्लाह ही है जिसको वो चाहे सुनवा दे, यानी हिदायत अल्लाह के हाथ में है। और ये भी हम जो कहते हैं ना, अगर हमें कहीं किसी का पता चला, फिर वहां से उसका पता चला, फिर वहां से कुरान का पता चला, फिर हम कहते हैं हम वहां चली गई इत्तेफाक से, मैं उस दिन मेरी दोस्त के साथ थी तो वो मुझे वहां ले गई और फिर वहां पे मैंने ये कुरान सुन लिया, बस मेरा दिल बदल गया, मेरा ऐसे हो गया। तो ये वो इत्तेफाकात नहीं होते, ये अल्लाह सुनवाता है जिसको वो चाहता है। ये अल्लाह ताला का सुनवाना होता है और अल्लाह सुनवाता जरूर है एक दफा। हाँ, ये इंसान कहीं और ही नहीं करते। इसी तरह अल्लाह हिदायत देता है जिसको वो चाहता है, तो हिदायत के दरवाजे भी वो ही खोलता है। वमा अंता बिमुस्मिअ मन फिल कुबूर, और आप नहीं सुनवाने वाले उनको जो कब्रों में है। कब्र में होने का मतलब क्या, एक माना इसका यहाँ पे ये कि काफिर जो है ना वो ऐसे है जैसे कि वो कब्र के अंदर होता है, और कब्र वाले को बाहर वाले कितना भी पुकारते रहें वो उसको सुनवा नहीं सकते। ये यहाँ पे हकीकत आपके सामने आ गई है। अभी भी कोई कहे कि नहीं जी वो कब्रों में सुन रहे होते हैं, ये तो काफिर की बात हो रही है। फिजिकल चीज से ये एग्जाम्पल दे के समझाया गया है कि काफिर भी ऐसा ही है। अगर आपका ये ईमान है कि नहीं वो मुर्दा जो कब्र के अंदर है वो सुन रहा है, तो ये आयत क्या कह रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं सुनवा सकते, तो मैं और आप सुनवा सकते हैं। हाँ, बदर के वक्त में, मैंने आपको पहले भी बताया था, बदर के कुएं में जो थे लाशें थी उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब किया था, अल्लाह ने उनको सुनवाया था, इन्नल्लाह युस्मियु मन यशाउ, जिसको अल्लाह चाहे सुनवा दे। उतनी देर के लिए अल्लाह ताला ने वो बात सुनवाई थी, लेकिन आप नहीं किसी को सुनवा सकते जो कब्रों में हैं। अब आप जितनी मर्जी की तावीलें और कर दें, बिल्कुल साफ वाजे ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद अब इधर से उधर कोई हेर फेर करके इसके डिफरेंट माने बना लेना, वो अब आपको कोई करके ऐसे हो सकता है बताए, लेकिन आप खुद तो देख रहे हैं ना, आपको खुद माना अब आता है, मीनिंग आता है ना अब आपको। उसको जी ख्वाब आ गया, फलाने ने ये कह दिया, मेरी कब्र में आके ये करो, फिर मुझसे ये मांगोगे, फिर मेरे ये करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मुरादें पूरी होंगी, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, हम जाके आप वहां पे मांगते हैं। अब पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाई हुई हैं, वो कहानियां सच्ची हैं या कुरान सच्चा है, पहले तो ये फैसला करें। आप नहीं सुनवा सकते जो कब्रों में है, पहले तो एक इसकी जो सामने लिटरल मीनिंग है वो क्या कि आप नहीं सुनवा सकते। कब्र में जो इंसान मर चुका है उसको आप कितना भी पुकारें, कितना भी चाहेंगे वो सुन ले, आप नहीं सुनवा सकते। ठीक है, अब इससे इस चीज को प्रूव किया गया है, इसकी एग्जांपल देके ये साबित किया गया कि काफिर भी इसी तरह मुर्दा ही है। अब आप उसको कितना भी कहते रहें, कितना भी समझाते रहें, वो मुंह मोड़ के ही बैठा रहेगा, वो बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि उसका दिल मुर्दा हो चुका है। तो ये काफिर ऐसे यानी स्टेज पे भी पहुंच जाते हैं कि बात का असर कबूल करते ही नहीं है, यानी ऐसे लगता है कि डेड है अंदर से, जैसे आप टकरे मारे हैं दीवार के साथ, इसी तरह हो जाते हैं। इतने कुफर के उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। अब आप उनको कितना भी कहते रहें, ये ऐसे ही है जैसे आप मुर्दे को पुकारते जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये सुनता है, तो वो तो सुन नहीं रहा, इसी तरह ये काफिर है। जब वो कहते हैं कि जी वहां पे जाके हम सलाम कहते हैं उनको, तो फिर वो सुनते हैं नहीं, वो आपके सलाम को सुन नहीं रहे होते मगर अल्लाह ताला उन तक पहुंचा देता है। ठीक है, लेकिन वो आपके आपके सलाम को डायरेक्टली नहीं सुन सकते, अल्लाह उनके ऊपर सलामती डाल दे, वो तो अल्लाह ताला के ऊपर है। मगर यहाँ पे बता दिया गया मुर्दा नहीं सुन सकता बाहर वालों की बात को। अब इसके बाद भी हम जाके फिर कब्रों पे जाके उनसे बातें करें, जी आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, वैसे हो गया वैसे हो गया, अपनी कहानियां बताएं, अब आप मुझे माफ़ कर दें, अब आपको मैंने माफ़ कर दिया, फलां हो गया, ये सब चीज़ें याद रखें उन तक नहीं पहुंच रही। ये आपकी कहानियां तो हो सकती हैं या आपकी दिल की ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर उन तक नहीं पहुंचती ये बात। इन अंता इल्ला नदीर, ए नबी आप सुनवा नहीं सकते, वो तो उनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, आप तो सिर्फ नजीर हैं, आप खबरदार करने वाले हैं, आपका काम सिर्फ ये है कि आप पहुंचा दें, जबरदस्ती इनको मुसलमान करना, इनको जबरदस्ती हिदायत दे देना, इनको इनकार को इकरार में बदल देना, ये नहीं आपका काम भी नहीं है और आप इसके लिए हैं भी नहीं, आप तो सिर्फ नजीर हैं। इन्ना अरसलना का बिलहक बशीर व नजीरा, बेशक हमने आपको भेजा हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना के, खुशखबरी देने वाला उनके लिए जो ईमान ला के साले अमल करें, और नजीर हैं आप उनके लिए जो कुफर का रवैया अख्तियार करे। व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई उम्मत ऐसी गुजरी नहीं है मगर उसमें कोई ना कोई खबरदार करने वाला जरूर आया। इसलिए कोई ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि हमारे पास तो नहीं कोई आया, हमें तो नहीं किसी ने बताया, क्योंकि कुरान कहता है कि कोई उम्मत भी नहीं गुजरी मगर उसमें खबरदार करने वाला कोई गुजरा है, अल्लाह ने हुज्जत तमाम कर दी हुई है लोगों पे। हाँ, मगर ये था कि वो रसूल अपनी अपनी उम्मतों की तरफ, अपनी अपनी कौमों की तरफ आते थे, और जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो कयामत तक के लिए आए हैं, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और रसूल के आने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपकी तालीमात भी महफूज हैं और आपके ऊपर उतरने वाला कलाम भी महफूज है आज तक, क्योंकि ये कयामत तक के इंसानों के लिए यही तबलीग है, यही दावत है। वह इन युकजिबू का, और अगर वो झुठलाएं आपको, फकत कर जबल्लदीना मिन कबलिहिम, तो इनसे पहले लोगों ने भी यही रबीश इख्तियार की थी, कोई नई बात नहीं है, पहले लोग भी ऐसे ही थे। जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, उनके पास भी उनके रसूल आए रोशन दलाइल लेकर, वह बिज़ुबुर, और सहीफों के साथ जो आसमानी किताबें पहले उतरी हैं वो लेकर आए थे, वह बिल किताबिल मुनीर, और साथ रोशन किताब के यानी तौरात के, उनके पास मौजज़े भी आए। बय्यिनात क्या है? वाज़े रोशन दलाइल क्या है? जो मौजज़े थे उनके पास, उन लोगों के पास मौजज़े भी लाए गए, उनके पास सहीफे भी आए, उनके पास किताबें भी आएंगी, लेकिन उन्होंने तस से मस ना हुए, एक ही रविश इख्तियार किए रखी और वो थी इनकार की। तो ये जो आज आपको लगता है ना कि हाय नहीं लोग मानते, क्यों नहीं मानते, क्या हो गया है लोगों की अकल को, क्या हो गया है लोगों को, क्यों नहीं समझ आती, हमने तो इतना बताया, तो ये इंसानों की कोई आज की बात थोड़ी है, तो पुरानी रविश है, यही तरीका हमेशा से चला आ रहा है, लोग ऐसे ही करते हैं, अक्सरियत ऐसे करती है, कम लोग होते हैं जो मानते हैं। अब इंसान सोचता है मेरी पता नहीं बताने में कोई कमी है, क्या है, रसूल इस चीज से रंजीदा होते थे, गमगीन होते थे, लेकिन बात ये नहीं है, इंसानों में हमेशा से अक्सरियत ऐसी थी जिसने इनकार ही किया, और रसूलों की बातों का इनकार किया, तो मैं और आज आप क्या चीज है। फिर मैंने पकड़ लिया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने पकड़ लिया, अल्लज़ीना कफरू, उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, फकैफ़ काना नकीर, तो फिर देखो कि मेरी पकड़ कैसी हुई, मेरी सजा कैसी रही। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह ताला हमें अपनी तमाम सजाओं से बचा के रखे, दुनिया और आखरत की हर सजा से बचा के रखे। अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए, क्योंकि जब वो पकड़ता है तो उसकी पकड़ बड़ी सख्त होती है। लोगों ने इनकार किए, उन्होंने सोचा हमें कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, फिर जब पकड़ आई ना तो फिर उनको संभलने का मौका नहीं मिला। और आप कितनी दफा कुरान में पढ़ चुके हैं वो तमाम किस्से जो पिछली कौमों के आए थे, कि कैसे उन्होंने बेफिक्री और बेखौफी की रविश इख्तियार की, रखी उनको परवाह ही नहीं थी, वो समझते थे को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब पकड़ आई तो फिर बच कोई नहीं सका। और जब अल्लाह की पकड़ आती तो पलटती नहीं है, फिर इंसान कहता रहे कि अब मैं माफी मांगता हूँ, अब मेरी ये करता हूँ, फिर वापसी नहीं हो सकती। अब एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया میں جتنے زلزلے آئے ہیں تو پتہ چلا کہ زلزلے بھی اکثر ایسی جگہوں پہ آئے ہیں جہاں پہ انسانی آبادیاں تھیں, جہاں پہ خالی خطے ہیں نا وہاں پہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ہم جو کہتے ہیں یہ پلیٹ ہل گئی, فلانا ہو گیا, یہ ہریکین آ گیا, یہ سب یہ اللہ کی طرف سے ایک جھنجھوڑ ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے, باز آ جاؤ تم. بندوں کو وقتاً فوقتاً یاد دلاتا رہتا ہے, ان کو جھنجھوڑتا رہتا ہے. بندے اگر سمجھیں تو پھر ہے, اور وہ اس کو یہی تعویلیں پیش کرتے رہتے ہیں, بس آ گیا نیچرل ڈیزاسٹر تھا. بس نیچرل ڈیزاسٹر کوئی کوئی ساؤتھ پول نارتھ پول پہ تو آتے نہیں ہیں, نیچرل ڈیزاسٹر وہیں کیوں آ رہے ہیں جہاں پہ کوئی انسانی آبادیاں ہوتی ہیں. انسانوں کے اعمال کا کوئی تو تعلق ہے نا اس سے. اللہ اکبر. الم ترا, کیا تم نے نہیں دیکھا, ان اللہ انزل من السماء ماء, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی, بارش یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے. اور اس میں بار بار قرآن کریم میں واٹر سائیکل کی بات آتی ہے, بار بار اس چیز اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کی طرف ہم آیات میں پڑھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ آسمان ہے اور پانی اوپر سے برس رہا ہے. وہ پانی بھی نیچے سے اوپر گیا ہے, ہم سے ایک ٹینکی سے پانی اوپر نہیں چڑھایا جاتا, بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں تو ہمارے یہاں پانی اوپر ہی نہیں پہنچتا. کیسے اللہ تعالیٰ آسمانوں تک پانی پہنچا دیتا ہے, پھر وہاں سے وہ پیچھے نیچے آتا ہے پھر دوبارہ. تو انہیں یہ نشانی نہیں ہے اللہ کی, اس پہ غور نہیں کیا تم نے؟ ویسے تو سارے ہی دیکھتے ہیں بارش برستے ہوئے, انجوائے بھی کرتے ہیں, لیکن اس نشانی پہ غور کرو کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ ٹپکاتا ہے پانی. اور پھر فأخرجنا به ثمرات, پھر آگے بھی دیکھو اس سے اس نے ہم نے کیسے اس کے ساتھ پھل نکالے, یہ بھی غور کی بات ہے. مختلفاً الوانوہا, یہ اگلا کرشمہ کہ دیکھا پہلے کہ اس زمین پہ پانی پڑا اور اس میں سے پھل نکلے, پھل فروٹ یا پروڈیوس کوئی بھی کہہ سکتے ہیں آپ, یہ نہیں کہ صرف پھل ہی اس کے اندر ہو گئے, بلکہ گندم ہے, چاول ہے, اور کاٹن ہے, اور کیا کہ جو بھی پروڈیوس ہے وہ سارا اس زمین سے نکلا. اور مختلفاً الوانوہا, حیرت کی بات یہ ہے, سوچنے کی بات یہ ہے, مختلف رنگوں کا. زمین کا اپنا رنگ تو براؤن ہے, رنگ اس میں سے کیا کیا نکل رہے ہیں. آپ تین فروٹ ہی سامنے رکھ کے دیکھ لیں, ایک کیلا, ایک سیب, ایک مالٹا. آپ دیکھیں سبحان اللہ, تینوں کے ٹیکسچر ڈفرینٹ, تینوں کی شکل ڈفرینٹ, تینوں کے ذائقے ڈفرینٹ, تینوں کی خوشبو ڈفرینٹ, یعنی بالکل شیپ میں فرق ہے, کلرز میں فرق ہے. نکلے اسی پانی سے اور اسی زمین سے, پانی ایک, زمین ایک, پھر کیسے؟ سبحان اللہ, کیا اس وقت انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی خدا ہے اس کے پیچھے جو کار فرما ہے؟ جیسے زندہ اور مردہ کا فرق ہے, آپ دیکھیں پھلوں میں بھی فرق ہے. اسی طرح یہ زمین اختلافات سے بھری پڑی ہے, طرح طرح کے رنگ. اب رنگوں میں کوئی گرین ہے, کوئی یلو ہے, کوئی اورنج ہے, کوئی ریڈ ہے, کوئی کالا ہے, کوئی براؤن. دیکھیں آپ کھجور براؤن ہے. کیا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کون یہ رنگ بھر رہا ہے ان کے اندر. میں تو سوچتی ہوں کہ ایتھیسٹ جو ہے نا وہ اللہ کی کائنات پہ ہی غور کر لے تو اس کو ایمان نصیب ہو جائے. وہ غور تو کرو بے وقوفو, کہ تمہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس زمین سے نکلنے والے کیسے رنگ برنگے, کس نے بنا دیے؟ تمہارے کچن میں تو ایک کھانا بھی نہیں پکتا بغیر کسی کے پکائے ہوئے. ایک دال ہی بنانی ہو, سمپل چیز بھی بنانی ہو تو کچھ نہیں بنتی, خود بخود نہیں بن جاتی. یہ کائنات میں اتنے رنگ بکھیرنے والا کوئی بھی نہیں. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ, اور پہاڑوں میں سے دھاریاں, بیدن, وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِ بُسُود, پہاڑوں میں بھی کوئی دھاریاں سفید ہیں, کوئی سرخ ہیں, ڈفرینٹ کلر کی ہیں, اور غرابی بسود بھی ہیں, سیاہ کالی بھی ہیں. अच्छा अब आप कहेंगे हम तो पहाड़ों में कभी गए ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। अच्छा अगर आप पहाड़ों में नहीं गए ना, किसी ये ग्रेनाइट है या मार्बल फैक्ट्री में चले जाएं। मैं कहती हूँ कि इंसान की अकल दंग रह जाती। मैं ग्रेनाइट फैक्ट्री में गई, हमें चाहिए था, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी जैसी शीट्स होती हैं ग्रेनाइट की, वो पड़ी हुई थी, और कौन सा रंग था जो उनमें नहीं था। और आपको इतनी हैरत होती है कि उसके अंदर जो क्रिस्टल्स हैं, आप ब्लैक मार्बल देखें, जो ब्लैक ग्रेनाइट है वो देखें, उसके अंदर ऐसे है जैसे किसी ने, सुभान अल्लाह, जैसे रात आसमान पे अंधेरे के अंदर सितारे चमकते हैं, इस तरह उसके अंदर ऐसे वो क्रिस्टल्स हैं जो इतने खूबसूरत चमकते हैं। ये लोग तो ऐसा बना ही नहीं सकते चीज़ को, इसीलिए इतना महंगा है ग्रेनाइट, इतना एक एक उसकी शीट, और कितने रिफाइंड होते हैं वो, कितने खूबसूरत होते हैं, और क्या क्या कलर्स हैं उनके अंदर, और क्या क्या पैटर्न्स हैं उनके अंदर, क्या क्या धारियां हैं, क्या क्या डिजाइन्स हैं उनके अंदर। पहाड़ों में भी अल्लाह ताला ने ऐसे डिजाइन्स बनाए हैं। तो चलो मैं और आप नहीं गए कहीं पहाड़ी सिलसिलों में घूमने के लिए, तो कम अज कम एक ग्रेनाइट फैक्ट्री में जाके देख ले। हैरत से इंसान बस दंग ही रह जाते, देखता रह जाते, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला ने कैसे कैसे पहाड़ बनाए जिनकी ये शीट्स ही उतार उतार के ले आए, आज तक खुद नहीं ऐसी बना सके चीजें। और सियाह काला जो ब्लैक ग्रेनाइट है उसकी खूबसूरती के क्या कहने, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। वमिन الناس والدواب والانعام مختلف الوانها الوانه كذلك, इसी तरह है लोगों में भी, जानवरों में भी, मवेशियों में भी, मुख्तलिफ अलवानों, सबके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। इंसानों में देख लें आप, कोई गोरों को देख लें, सफेदी ही नहीं ख़त्म होती, आप किसी हबशी काले को देख लें, कालाहट इतनी ज़्यादा, आप किसी ब्राउन को देख लें, वो कैसा एक बिल्कुल ही डिफरेंट कलर, यानी इंसानों में कितने सारे कलर हैं, फिर मवेशियों में कितने कलर हैं। आप एक स्पीशी को ही देख लें, आप एक बिल्ली को ले लें, कोई वाइट है, कोई ब्लैक है, कोई ब्राउन है, कोई बिल्कुल ही भूरी सी है, कोई गोल्डन सी है, कोई कितनी तरह की है। फिर हर एक एक जानवर को दूसरे से देख लें, कितने फर्क फर्क कलर है, ऐसे नहीं लगता किसी ने पेंट किया हुआ है सारी कायनात पे। और आप देखें अपने दरख्तों को देख लें, आपके दरख्तों के अंदर किस किस तरह के पत्ते आते हैं, किसी दिन हरा है, किसी दिन पीला है, किसी दिन ब्राउन हो गया है, किसी दिन फिर फ्रेश ग्रीन है, किसी दिन हल्का ग्रीन हो गया, सुभान अल्लाह। तो जानवरों में भी, इंसानों में भी, मवेशियों में भी, आप गाय भैंस को भी देख लें, उनके कितने रंग हैं, घोड़ों के देख लें कितने रंग हैं, सुभान अल्लाह। और कितना खूबसूरत पेंट है ये, और इससे रेसिज्म भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब इंसान कहता है कि अल्लाह ने ये रंग पैदा किए इंसानों में भी, कोई काला है, कोई गोरा है, तो फिर रेसिज्म कहाँ रह जाता है, ये पेंट करने वाला कौन है, तो अल्लाह ताला है। फिर हमें क्या हक बनता है कि हम किसी को कमतर समझें और किसी को ज्यादा बड़ा समझें, और अपने आप को समझें कि हम बहुत बड़ी चीज हो गए, हमारा पेट भी अल्लाह ने किया है, किसी और का भी अल्लाह ने किया है, तो ये तो सारी अल्लाह की कुदरतों की निशानियां हैं, इससे कोई बड़ा या छोटा थोड़ी हो जाता है। और सोचें थोड़ी देर के लिए, अगर ये कायनात ब्लैक एंड वाइट होती, अगर अल्लाह ताला हमें यहाँ ब्लैक एंड वाइट दिखाता, जैसे जानवरों को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही नजर आता है, यहाँ अल्लाह माफ करे जो कलर ब्लाइंड होते हैं उनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नजर आता है, उनके लिए ये दुनिया कितनी बेरंग सी है, हमारे लिए कितनी खूबसूरत है। अगर गौर करें तो हर वक्त अल्लाह की तस्वीर मुंह से निकले कि सुभान अल्लाह ही कितना खूबसूरत कलर है। आपको पता है ये नेचुरल कलर्स ही देख के, ये जो कपड़ों के कलर्स बनाते हैं ये पेंटर्स वहीं से देख के तो बनाते हैं, इनको आइडियाज आते हैं कि ये कलर भी इस तरह से बन सकता है, ये कलर भी ऐसा हो सकता है। तो कलर्स भी अल्लाह की कुदरत है, कभी आपने ये सोचा, कलर्स अल्लाह की कुदरत है, सुभान अल्लाह। हम तो पेंटिंग करते हैं या ड्राइंग्स में कलर भरते हैं, मार्करों के कलर देखते हैं, लेकिन ये आए सब वहीं से हैं कि अल्लाह ने ये कलर बनाए। तो ये ब्लैक एंड वाइट कायनात होती तो बहुत फीकी होती, अल्लाह ने इसको खूबसूरत रंगदार बना दिया, तुम फिर भी ना समझे क्यों, और तुम्हें ये सारे रंग दिखाए, तुम्हें समझ नहीं आती क्यों। तुम उस रंग करने वाले को पहचानो। अल्लाह अकबर। लेकिन सब नहीं पहचानेंगे, सब नहीं अल्लाह की कुदरत को जानेंगे, सब इन चीजों पे गौर नहीं करेंगे। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से तो डरते वही हैं जो उसके बंदों में से इल्म वाले होते हैं। जो इल्म लेगा ना वही अल्लाह को पहचानेगा, उसी को अल्लाह की मार्फत आएगी। इल्म ये नहीं होता कि आप डिग्रियां ले लें, आपने कितने सर्टिफिकेट लिए हैं, आप ग्रेजुएट किए हैं कि नहीं किए, ये नहीं इल्म होता। इल्म क्या चीज होती है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है उसके जो उलमा, उसके बंदों में से जो उलमा है ना वही अल्लाह से डरने वाले हैं। इसका मतलब हकीकी इल्म क्या है? जो अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ, उसकी खशियत पैदा करे। खशियत क्या होती है? मैंने आपको भी बताया, खशियत ये है कि किसी की अजमत का एहसास दिल में आ जाना कि कोई कितना अजीम है, कितना बड़ा है। वो ऐसा नहीं डर के जैसे आपको शेर से आए, सांप से आए, इससे आए, वो नहीं, उसकी अजमत की वजह से आए। तो ये सिर्फ उलमा में होता है और किसी में नहीं होता। इससे आपको इल्म की फजीलत भी पता चलती है कि इल्म की कितनी बड़ी फजीलत है। क्योंकि अगर हमने अपने अंदर खशियत पैदा करनी है, ये तो वो इल्म के बगैर नहीं आ सकती। खशियत इलाही सिर्फ उलमा का खासा है, गैर आलिम में खशियत नहीं हुआ करती। और लफ्ज उलमा से भी वो लोग मुराद हैं जो अल्लाह की जात, उसकी सिफात का इल्म रखते हैं और इस उसके एहसानात, उसकी इनामात, उसकी नेमतों के ऊपर नजर रखते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि इतनी मैंने, मुझे इतनी आयतें हिफ्ज हैं, मुझे इतने हदीसों का तर्जुमा आता है, या मुझे ये जुबानी याद है, फलानी आयत फलानी सूरत के अंदर फलानी जगह पे ये चीज लिखी हुई है, तो मैं तो बहुत बड़ी आलिमा बन गई। आप देखें अभी भी लोग कहते हैं, पूछते हैं, आप आलिमा हैं कि नहीं, आपने आलिमा का कोर्स किया है? तो भाई आलिम वो नहीं होता छोके के कोर्स करके आ जाए। हो सकता है आप बहुत बड़ी आलिमा हो, आपने कोई भी कोर्स ना किया हो, लेकिन आप बहुत बड़ी आलिमा हो, क्योंकि आपके इल्म ने आपको अल्लाह की खशियत दी हुई है। और हो सकता है कि कोई अपने आप को पता नहीं कितनी बड़ी आलिमा समझे, लेकिन वो उस वो अल्लाह की नज़र में वो कोई आलिमा नहीं है, इसलिए कि उसके अंदर खशियत इलाही नहीं है। हसन बसरी ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि आलिम वो है जो अकेले में और लोगों के सामने, यानी खलवत अल जलवत में अल्लाह से डरे, और जिस चीज़ कि अल्लाह ने तरगीब दी है वो चीज उसको महबूब हो, और जिस चीज को अल्लाह ने मबहूज किया है, उसको अल्लाह उस चीज के ऊपर अल्लाह का गुस्सा है, उससे उसको नफरत हो, तब है कोई आलिम। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, बहुत सारी अहादीस याद कर लेना या बहुत बातें करना कोई इल्म नहीं है, बल्कि इल्म वो है जिसके साथ अल्लाह का खौफ हो। यानी अगर मैं आपको यहाँ पे लेक्चर दे रही हूँ, कोई दर्स दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई आलिमा हूँ। हो सकता है जो सुनने वाले हैं वो मुझसे बड़े आलिम हों, इसलिए कि उनके अंदर खुदा खौफी है। तो जिसमें जितनी ज्यादा खुदा खौफी होगी वो उतना ही बड़ा आलिम होगा। इसी तरह अहमद बिन साले मिस्री ने फरमाया कि खशियत इलाही को कसरत रिवायात और कसरत मालूमात से नहीं पहचाना जा सकता। यानी मैं वो फलाने की रवायत है, फलानी हदीस, फलानी जगह ये है, बल्कि इसको किताबो सुन्नत के इत्तेबा से पहचाना जाता है। और जिस शख्स में खशियत ना हो वो आलिम नहीं है, यानी जो अल्लाह से नहीं डरता वो आलिम नहीं है। बाज दफा लोग रिचुअल्स पे बहुत तवज्जो होती है उनकी, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, जरा सा भी कहीं इधर से उधर ना हो जाए कोई चीज, लेकिन उनके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं होता, खौफ खुदा नहीं होता। बस नमाज में ये हरकत ना हो जाए, इतनी दफा ना हिल लें, इतनी दफा ना कर लें, वजू के अंदर ऐसा ना हो जाए, वैसा ना, मगर खुदा खौफी नहीं है तो वो आलिम नहीं है। साद बिन इब्राहिम से किसी ने पूछा, मदीना में सबसे ज्यादा बड़ा आलिम कौन है? फरमाया, जो अपने रब से सबसे ज्यादा डरने वाला। फकीह की भी तारीफ जब हजरत अली से पूछी गई तो फकीह कौन है? फकीह मुकम्मल फकीह वो है जो लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस भी ना करे और उनको गुनाहों की रुख्सत भी ना दे, क्योंकि गुनाह करते रहो कोई बात नहीं अल्लाह गफूर रहीम है, और ना ही अल्लाह की रहमत से मायूस कर दे, और उनको अल्लाह के अजाब से मुतमईन भी ना करे कि कोई फिक्र ना करो अल्लाह के अजाबों से, कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुरान को छोड़कर किसी दूसरी चीज की तरफ रगबत ना करे कि कुरान की जरूरत नहीं आओ हम ये पढ़े। और फरमाया उस इबादत में कोई खैर नहीं जो बे इल्म के हो, बगैर इल्म के कोई उस इबादत में कोई खैर नहीं जो बगैर इल्म के हो, और उस इल्म में कोई खैर नहीं जो बेसमझी के साथ हो, बगैर समझ बूझ के हो, और इस किरात में यानी कुरान की तिलावत में कोई खैर नहीं जो बगैर तदब्बुर के हो, उन्हें गौर व फिक्र ही नहीं है। अल्लाह अकबर। तो ये चीज को समझना चाहिए, हमें अपनी ये डेफिनेशन इस चीज की बदलनी पड़ेगी कि आलिम कौन है या आलिमा कौन है, और जो हमने आलिम और आलिमा के कोर्स बना के सोच लिया हुआ कि बस हम तो इतने बड़े आलिम बन गए, वो आलिम होना नहीं है, बल्कि खशियत इलाही होना जरूरी है, अल्लाह से डरना जरूरी है कि अल्लाह, यानी आपने इल्म लिया है, अब आपसे चाहे कोई गुनाह नहीं भी होता, बिल्कुल पाक साफ भी हो गए, फिर भी अल्लाह की हैबत उसका जलाल इतना दिल में हो कि पता नहीं मेरे से कौन सी ऐसी बात ना हो जाए अल्लाह नाराज हो जाएगा, पता नहीं मेरे पर अल्लाह की कोई पकड़ ना आ जाए। क़यामत के दिन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जो होंगे नफसी नफसी पुकारेंगे, वो क्यों? इसलिए कि उनके अंदर खशियत बहुत ज्यादा है, ये नहीं कि उनके अस्तग़फिरुल्लाह कोई गुनाह है बहुत ज्यादा तो वो कह रहे हैं नफसी नफसी, बल्कि उनके अंदर इतना ज्यादा अल्लाह का खौफ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बेशक मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और तुम सबसे ज्यादा मैं अल्लाह को जानने वाला हूँ, यानी चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को जानते थे इसीलिए आपके अंदर खौफ खुदा सबसे ज्यादा था। तो ये जो लोग सोचते हैं ना, पता नहीं किसी के अंदर खौफ खुदा होना ये तो कोई बुरी बात है और हमें तो कोई डर नहीं लगता, हमें तो इसलिए नहीं डर लगता या इसलिए अल्लाह ताला की हैबत और उसका जलाल और उसका एहसास नहीं है उनके अंदर, क्योंकि उनको इल्म ही नहीं है। अगर इल्म होता ना कि वो रब कितना बड़ा है और उसकी कुदरत कितनी बड़ी, उसकी खुदाई कितनी बड़ी, उसकी पकड़ कितनी बड़ी, उसका जलाल कितना बड़ा है, उसका गजब कितना बड़ा है, और वो उस कहाँ कहाँ तक उसकी दस्तरस है, उसकी रीच है, उसकी कुदरत है, तो इंसान तो ये बातें सोच के ही जो है ना दब जाता है, उसके अंदर खशियत पैदा हो जाती है, वो छोटा सा हो जाता है। जैसे जैसे आपसे पहले बात हुई थी कि फरिश्ते जब अल्लाह ताला का कोई हुक्म आता है तो कैसे हो जाते हैं, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कैसे हो गए थे, जैसे कोई पुरानी मश्क होती है, लेदर बैग्स होते थे पहले पुराने जमाने में, उसमें पानी भरा जाता था, तो जैसे वो पुराना सा हो जाता तो चुरर मुड़र हो के बिल्कुल रिंकल्ड हो जाता है ना, छोटा सा हो जाता है, पुराना हो जाए तो इस तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम की हालत थी। हालांकि 600 परों के मालिक और अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं, फरिश्तों के सरदार हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उनकी ये हालत थी, क्योंकि फरिश्ते जानते हैं अल्लाह कौन है। तो हम ये जो समझते हैं ना, ओ पता नहीं इन्होंने कितने गुनाह किए हैं, बेचारे इतने डरते रहते हैं, हमें तो नहीं कोई ऐसा मसला, तो हम तो ठीक ठाक हैं, ये रोएं तो रोएं, ये डरें तो डरें, जाहिर है इन बेचारों ने पता नहीं क्या किया होगा इसलिए इन बेचारों को इतना डर लगता है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बस ठीक है। तो ये ऐसी बात नहीं है, जाहिर है जिसको कुछ पता होगा उसी को डर लगेगा। आप ये देख लें एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ, इसके साथ तो बिल्कुल मुमासलत नहीं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये इलेक्ट्रिक करंट है ना, इस करंट में हाथ डालने से आपको डर लगेगा, लेकिन अगर आप किसी 2-3 साल के बच्चे को ले आएंगे उसको नहीं डर लगेगा, वो उंगलियां स्विच के अंदर डालता जाएगा। वजह क्या है, फर्क क्या है, फर्क क्या है, क्या वो ना डर है और आप ज्यादा डरपोक है? नहीं, फर्क यह कि आपको पता है, आपको इल्म है, इस वजह से आप डरते हैं कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, उसको इल्म ही नहीं, उसको पता ही नहीं, तो वो अपनी उंगलियां भी अंदर डाले जा रहा। यही फर्क होता है इल्म और बे इल्म में, इल्म वाले में और बे इल्म में। जब इल्म आने लगता है ना, जितना जितना आपको इल्म आता जाएगा आप उतने ही झुकते जाएंगे। वाकई अगर सही इल्म है झुकते जाएंगे और आपके अंदर आजी के अलावा खौफ खुदा, अल्लाह का जलाल, उसकी कुदरतों का एहसास आता जाएगा, सर उठाने की जरूरत नहीं रहेगी, आप रोएंगे अल्लाह के आगे, आप डरेंगे। वो तो उन्होंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, अंबिया अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के जलाल से ही डरते थे इतना ज्यादा कि वो जिंदगी में कितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से रोया करते थे। हम जैसों में तो गुनाह भी इतने हैं कि हमें तो उनकी फुर्सत नहीं। हमें सोचेंगे कितना ज्यादा खौफ खुदा होना चाहिए अगर हमें वाकई अल्लाह की कुदरत और उसकी पकड़ और उसकी इख्तियार का अंदाजा है जरा सा भी। पूरा तो हम अंदाजा कर ही नहीं सकते, हमारी तो अकल ही इतनी काम की नहीं है, हम कहाँ अल्लाह ताला की सिफात को उस तरह से जान सकते हैं जैसे हैं। लेकिन जितनी भी है, जितना भी हमें एहसास बढ़ता जाएगा और इल्म बढ़ता जाएगा, उतनी हमारे अंदर खशियत आती जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या रसूलल्लाह आप ये बताएं कि इसको सबसे अच्छा इल्म दिया गया। फरमाया, ये नहीं फरमाया जो कुरान का इल्म दिया गया उसको सबसे अच्छा इल्म दिया गया, इसको हदीस का इल्म दिया गया उसको सबसे अच्छा इल्म दिया गया। फरमाया जो तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता है उसको सबसे अच्छा इल्म दिया गया। तो आपके नंबरों का फायदा नहीं होगा आपको कि नंबर किसके हाईएस्ट है, कौन बड़ा उसे ए ग्रेड से ग्रेजुएट कर रहा है और कौन बी के साथ ग्रेजुएट कर रहा है और कौन पहले कर रहा है कौन बाद में कर रहा है। पता नहीं कितने ग्रेजुएट हैं जिनका इल्म वाकई अच्छा इल्म भी है या नहीं है, कितने ग्रेजुएट हैं जिनमें खुदा खौफी आई या नहीं आई, कितने हैं जो शायद ग्रेजुएट भी ना हुए और उनके अंदर खुदा खौफी हो। तो ये है चीज़ जो हमें इस इल्म से हासिल होनी चाहिए। अगर ये नहीं हासिल हो रही तो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। कहीं हम जैसे हमने अभी बात की कि कहीं हमारी दीनदारी वो तो नहीं है जो इसको हम दीनदारी सिर्फ समझते हैं और अल्लाह के हाँ ना, कहीं ऐसा तो नहीं हम बस पढ़ते जा रहे हैं रटते जा रहे हैं रटते जा रहे हैं और हमारा रटना ही खत्म नहीं होता, रट्टू तोते की तरह। वो तोते ही तो नहीं पैदा हो रहे, ये क्लासों में जा रहे हैं और तोते रट रट के निकल रहे हैं, ये रट लिया वो रट लिया, इतना तर्जुमा रट लिया, इतने कुरान रट लिया, बस प्रोड्यूस क्या हो रहा है ग्रेजुएशन वाले दिन, रट्टू तोते। कहीं ऐसा तो नहीं वाकई हमारे अंदर अल्लाह का डर आया? अगर आया है तो फिर हम आलिम हैं, चाहे कोई हमें आलिम माने या ना माने। और अगर नहीं आया तो कितनी भी डिग्रियां लेके हमारे पास कुछ नहीं। फिर पूछा गया वो कौन से अस्हाबे इल्म हैं जो अफजल हैं। फरमाया वो लोग अफजल हैं जब तुम अल्लाह का जिक्र करो तो वो तुम्हारे मददगार बन जाएं और जब तुम अल्लाह को भूल जाओ तो तुम्हें याद दिला दें। पूछा कौन से दोस्त या साथी बुरे हैं। फरमाया जब तुम जिक्र करो अल्लाह का तो तुम्हारी मदद ना करें और जब तुम भूल जाओ तो तुम्हें याद ना दिलाएं। फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐ अल्लाह उलमा की मगफिरत फरमा दे। ठीक है, उलमा की मगफिरत फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी उलमा को। अल्लाह अकबर। अगर इल्म लेकर भी खशियत ना आई ना तो ये इतनी खतरनाक बात है ना कि आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। इसलिए कि फिर अगर खुदा खौफ ही नहीं आई ना तो फिर तकब्बुर आ जाएगा, सरकशी आएगी, फिर ये होगा हमें तो इतना आता है, हम तो इतने वो हैं, हमने तो इतना ग्रेजुएट किया हुआ है, हमने तो इतना पढ़ा हुआ है, हम तो ऐसे हम, फिर ये आ जाता है अगर खुदा खौफ ही ना आए। आप ऐसे भी देखते हैं अपने आप को उलमा कहलाते हैं, बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठे हुए हैं, बड़े नामवर हैं, फलाने मदरसे के बड़े इंचार्ज हैं फलां हैं, और उसके बाद देखते हैं कि खुदा खौफी नाम को नहीं है, ये भी होते हैं। तो इसलिए इल्म एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है, ये वो चीज़ नहीं है जैसे आप यहाँ पे ये यानी कुरान का या दीन का इल्म वो चीज़ नहीं है जैसे आप ये यूनिवर्सिटियों और इनकी देख लेते हैं जी फलानी जगह का ग्रेजुएट फलानी जगह का ग्रेजुएट, नहीं ऐसा नहीं है। ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, इसका क्राइटेरिया ही डिफरेंट है। इसका क्राइटेरिया कागज नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्रियां नहीं है, 7 साल का 8 साल का कोर्स नहीं है। इसका क्राइटेरिया ही फर्क है, इसका क्राइटेरिया है आप में खौफे खुदा। और जब ये इल्म आ जाए ना जो यहाँ पे मतलूब है, जिसको यहाँ पे कहा गया कि ये उलमा, तो उनके बारे में फिर कुल हल यस्तविल्लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून। ए नबी आप कह दें बराबर नहीं हो सकता है वो जो इल्म रखने वाला और जो इल्म नहीं रखता, फिर वाकई बराबर नहीं होते। फिर वाकई इल्म रोशनी और जिंदगी और जहालत अंधेरा और मौत, वो वाकई सही इल्म आया जिसमें खौफ खुदाई। ये उन इल्म वालों की बात नहीं हो रही कि जो बस रटते रहते हैं और कुछ उनके अंदर खौफ खुदा नहीं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है ऐसे इल्म वालों के बारे में, यरफाउल्लाहु अल्लदीना आमनू मिनकुम वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला बुलंद करता है ईमान वालों के दर्जे और इल्म वालों को अल्लाह ताला दर्जात में बुलंद कर देता है, अरफा कर देता है, आला कर देता है, ऊपर कर देता है। जिसका इल्म जितना ज्यादा होगा उसका दर्जा भी फिर उतना ज्यादा होगा, और उलमा को आम मोमिनों पर फिर 700 दर्जों की बुलंदी नसीब होगी। और आप समझ रहे हैं ना कौन से उलमा, और दो दर्जों के दरमियान 500 साल की मसाफत होगी। तो अब ये हम सब के लिए सोचने की बात है कि हम कैसा इल्म ले रहे हैं, कौन सा इल्म ले रहे हैं। अगर उससे खशियत इलाही नहीं आई तो फिर क्या कर रहे हैं हम। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें वो इल्म अता फरमाए जिससे हमारे दिलों में खशियत पैदा हो। अल्लाह वो इल्म अता फरमाए जो मतलूब है। अल्लाह वो इल्म अता फरमाए जिससे हमारी बख्शिश हो जाए, जिससे हमारी जिंदगियां बदल जाएं। तो ये जो लोग ये कहते हैं ना, ये भी सुन लें, जो लोग ये कहते हैं कि हाँ हमारे अंदर खौफ खुदा तो बहुत है लेकिन आता जाता हमें कुछ नहीं, हमें पता कुछ नहीं है, और या हमारे अंदर बस खौफ खुदाई तो है। अब वो आपके अंदर ही तो सिर्फ नहीं है, हमारे अंदर भी बड़ी खौफ खुदाई है। तो अगर इल्म नहीं है तो याद रखें खौफ खुदाई नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे पता चला इन्नमा कलमा हसर है कि सिर्फ और सिर्फ खशियत इलाही अल्लाह के बंदों में से उलमा को मिलती है। बस इसे पता चला इल्म कितना जरूरी है हासिल करना, इल्म के बगैर ये खशियत नहीं आ सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म का तलब करना हर मुसलमान पे फर्ज है, हर मुसलमान पे। ठीक है, आपको ये नहीं कहा गया कि आप वो बन जाएं जैसे कि लोगों को फतवे बताएं, लोगों को आप विरासत के मसाइल आप हल हल कर करके बताएं या ऐसे, लेकिन बेसिक इल्म कुरान और हदीस का सबके पास होना चाहिए जिससे आप अपने दीन पर अमल कर सकें सही से। आपको पता हो कि हमारा दीन क्या कहता है, अल्लाह ताला ने हमें क्या फरमाया, ये इल्म हासिल करना हर एक पे फर्ज है। वो जो यानी दीन के पेचीदा मसलों पे इज्तिहादात करना, फतवे करना, वो हर एक मुसलमान पे फर्ज नहीं है, मगर ये जिससे उसने अपनी जिंदगी गुजारनी वो तो सब पे फर्ज है, जो हदीस बता रही है कि फर्ज है। अब ये बात नहीं हमें समझ आती, हम सोचते हैं ये कहाँ लिखा है कि कुरान पढ़ना फर्ज है क्या, कुरान सीखना फर्ज है क्या, ये हम लोगों से सुनते हैं। हजरत काब रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम की तरफ वही फरमाई है, मूसा भलाई का इल्म हासिल करो। अपने नबी को अल्लाह ताला ने ये वही फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही फरमाई कि ऐ नबी आप दुआ करें कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। आपको ये नहीं फरमाया कि ऐ नबी आप दुआ करें कि आपके पास माल बहुत आ जाए, आपके पास औलाद बहुत हो, आपके पास मवेशी बहुत हो, आपके पास ही। फरमाया ज्यादती मांगनी है तो इल्म की मांगो कि अल्लाह इल्म ज्यादा कर दे। तो मूसा अलैहि सलाम की तरफ अल्लाह ताला ने ये वही फरमाई कि ऐ मूसा भलाई का इल्म हासिल करो और लोगों को सिखाओ, क्योंकि भलाई के मुअल्लिम और मुतअल्लिम यानी स्टूडेंट और टीचर दोनों की कब्रों को मैं नूर से भर देता हूँ कि वो कब्रों में वहशत महसूस ना करें। यानी ये इल्म जो है ना दीन का, कुरान का, अल्लाह ताला की मार्फत का, अल्लाह को जानने का, ये कब्र में भी इंसान की वहशत को दूर करेगा। ये इल्म इतनी बड़ी चीज़ है कि कब्रों को भी नूर से भर देता है। कौन सा और दुनिया का ऐसा इल्म होगा जो कब्रों को नूर से भर दे, जो जन्नत का रास्ता आसान कर दे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी इल्म की तलाश में किसी रास्ते पे चलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। तो फिर कौन सा और इल्म ऐसा होगा जो जन्नत का रास्ता आसान करे। इसके बावजूद अगर हम पूछें कुरान पढ़ना क्या जरूरी है, ये क्वेश्चन ही कैसा है, वो ये तो जरूरी क्या, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इंसान इसको छोड़े। अल्लाह अकबर। किसको नहीं जन्नत का रास्ता आसान चाहिए, किसको नहीं कब्र में नूर चाहिए। पहले तो ये पूछने के क्या जरूरी है कि कब्र में नूर मिले, क्या जरूरी है कि जन्नत में हम जाएं, इनका पहले जवाब दे दें, फिर हम ये फैसला कर लेंगे कि जरूरी है कुरान को सीखना या नहीं। اور اسی طرح حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا علم حاصل کرو کہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا خشیت ہے اور اس کا طلب کرنا عبادت ہے. آپ سوچتے ہیں نفل پڑھنا عبادت ہے صرف, روزہ رکھنا صرف عبادت ہے؟ فرمایا علم کا طلب کرنا عبادت ہے, یہ جتنی دیر آپ بیٹھے عبادت میں ہے. اس کا پڑھنا پڑھانا تسبیح ہے. آپ سوچتے ہیں سبحان اللہ کی تسبیح کروں گی وہ اس کے لیے ٹائم نہیں ملتا کیونکہ مجھے کلاس میں بیٹھنا پڑ رہا ہے. نہیں, پڑھنا پڑھانا تسبیح ہے, اس کی تحقیق کرنا ریسرچ کرنا اس کا جہاد ہے. جتنی دیر آپ کی ریسرچ میں لگتی سب جہاد ہے. اللہ کے راستے میں آپ بے علم کو علم سکھانا, یعنی جو اس کے پاس علم نہیں ہے اس کو علم سکھانا صدقہ ہے, اور اس کے اہل پر اس کی سخاوت کرنا قرب الہی کا ذریعہ ہے. یعنی جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو خاص طور پہ دینا, یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے, اور یہی تنہائی کا دوست ہے اور خلوت کا ساتھی ہے. دیکھیں تنہائی اس کو ہو ہی نہیں سکتی, وہ لونلی کبھی فیل ہی نہیں کر سکتا جس کے پاس علم آ جائے. اتنی بڑی نعمت ہے یہ, اس کو تو شاید کوئی اتنا بڑا کچھ سمجھتا نہیں ہے. یہ مطلب ایسے سوچتے ہیں کہ یہ بس ایک ایکسٹرا سی چیز ہے, کر لی تو ٹھیک ہے, فارغ ٹائم مل گیا تو ٹھیک ہے, کر لی نہیں بھی ملا تو کوئی ایسا نہیں کہ اس کے بغیر ہم کوئی ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا. یہ ہے ہمارا حال آج. لیکن یہ اندازہ کیجئے ان احادیث سے کہ اور بھی بے شمار احادیث ہیں علم کی فضیلت پر, اور کیسے علماء جو علم والے ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء وراثت میں جائیدادیں نہیں چھوڑ کے جاتے, علم کا خزانہ چھوڑ کے گئے. اللہ تعالیٰ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اس کو ہی یہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے, اس کا علم دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو آپ کو مل رہی ہو, تو اس کی قدر جانے. یہ جو عمل بھی ہوتا ہے نا, تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ عمل کے درجوں میں آگے بڑھیں تو اتنا علم میں سنجیدہ ہو جائیں, علم زیادہ لیں. جتنا آپ علم زیادہ لیتے جائیں گے انشاءاللہ عمل میں آسانی ہوتی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کے پاس واقعی علم ہوتا ہے, اور یہ سائنس اور جغرافی کا علم بھی تبھی آپ کے کام آئے گا, تبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت دے گا, اس کی خشیت دے گا, جب اس کے ساتھ دین کا علم ہوگا. اگر وہ خالی کھلی لینا شروع کر دیا تو پھر وہ بھی اکثر اللہ کی پہچان تو نہیں دیتا, انسان کہیں اور ہی بھٹکنے لگتا ہے. ان اللہ عزیز و غفور, بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے, بخشنے والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہے. وہ چاہے تو جس کو بھی پکڑ لے, چاہے تو جس کو بھی سزا دے دے, وہ اس کے پاس اتھارٹی ہے, اس کے پاس پاور ہے, لیکن وہ بخش دیتا ہے لوگوں کو فوری پکڑتا نہیں ہے, ان کی پچھلی کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ سمجھ آ گئی علم کی ڈیفینیشن, اور آپ سمجھ آ گئی کون سا علم مجھے حاصل کرنا ہے اور کس کے لیے مجھے شوق رکھنا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ, بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو. تلاوت سے مطلب کیا ہے؟ صرف ایسے پڑھنا نہیں جیسے ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ بس کچھ سمجھ نہیں آتا. تلاوت سے مراد وہ قرات ہوتی ہے, اور قرت نہیں ہوتی, قرات ہوتی ہے. تو تلاوت سے مراد ہے تلا یتلو تلون, مطلب فالو کرنا. فالو کرنا یعنی اس کے میننگ کو فالو کرنا, اس کو سمجھ کے پڑھنا. یہ انسان کی سوچ بدلتا ہے, یہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے, یہ انسان کو عمل پہ اکساتا ہے. وہ یہ لوگ ہیں, یہ علماء ہیں جن میں خشیت الہی آتی ہے, اور بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا پسند کرتا ہے, کیا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کو پسند کرتا ہے, اسے قرآن کی تلاوت مصحف دیکھ کر کرنی چاہیے. قرآن کی تلاوت کریں, سمجھ کے پڑھیں. جتنے پارے آپ کو اب پتہ چل گئے ہیں ان کا ترجمہ, ان کو دوبارہ کھول لیا کریں, ان کی تلاوت کیا کریں, اور ان کو صرف رمضان کے رمضان تک نہ اٹھا کے رکھیں, بلکہ ان کو ویسے بھی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں. देखें क़यामत के दिन क्या होगा कि कुरान जो है ऐसे आदमी की सूरत में आएगा जिसका रंग उड़ा हुआ होगा। वो आके अपने साथी से कहेगा, तूने मुझे पहचाना है? फिर अपना तारुफ पेश करते हुए कहेगा, मैं वो ही हूँ जो रातों को तुझे जगाया करता था, यानी रात को तू मुझे पढ़ा करता था और दिन को प्यासा रखता था, यानी पढ़ पढ़ के तुम थक जाते थे, तुम्हारा हलक खुश्क हो जाता था। और यकीनन हर ताजिर आज अपनी तिजारत के पीछे है, हर ताजिर अपनी तिजारत के पीछे होता है, और मैं आज हर ताजिर को छोड़ के तेरे लिए हूँ, मैं तेरे लिए आया हूँ। यानी लोग अपनी दुनिया में लगे हुए थे, अपनी तिजारत में लगे थे, तू मेरे साथ वक्त गुजारता था, लोग जॉबें कर रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, लोग उसी के अंदर फंसे पड़े हैं, तू मेरे लिए टाइम निकालता था, आज मैं सब को छोड़ के तेरे लिए आ गया। फिर उसे बाएं हाथ में बादशाहत और दाएं हाथ में हमेश की दे दी जाएगी, उसके सर पे इज्जत का वकार का ताज रखा जाएगा, उसके वालदेन को भी उम्दा पोशाकें पहनाई जाएंगी जो इतनी कीमती होंगी कि दुनिया और जो कुछ दुनिया में उसकी कीमत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो वालदेन कहेंगे, ऐ हमारे रब ये सब कहाँ से आ गया? उनसे कहा जाएगा, तेरी औलाद को कुरान सिखाने की वजह से, कि तूने अपनी औलाद को कुरान सिखाया था। तो रात में कुरान पढ़ना, दिन में कुरान पढ़ना बाइस सआदत है। तो जो अपना वक्त अल्लाह की किताब के साथ लगाते हैं, वो कभी इसको ये ना समझें कि ये पता नहीं फालतू मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, मेरा वक्त इतना जा रहा है, मेरा वक्त इसके ऊपर ही लग गया, मेरा तो इतना टाइम इसमें लग जाता है। इसको इरिटेट होके, इसको ऐसा बिलिटल करके इस तरह से ना समझें। ये निजात है, ये हमारी कब्र का साथी है, ये हमारी इस ज़िंदगी का भी साथी है। ज़िंदगी में भी इंसान के मसाइब उसके ऊपर आसान कर देता है, इंसान की तकलीफ़ों को ये आसान कर देता है, इंसान की परेशानियों में उसका साथी बन जाता है। ये अल्लाह का कलाम है, और ये कब्र में, मैंने आपको अभी बताया, नूर बन जाता है, कब्र में साथी बन जाता है जहाँ पर और कोई साथी नहीं होगा। हशर में ये साथ देता है, ये हशर में फिर सिफारिश करेगा, और अब मैंने जो आपको हदीस बताई कैसे आके इंसान से कलाम करेगा। तो ये लोग प्रैक्टिकली भी, ये सिर्फ ये नहीं होते कि कुछ बातें ही कर ली बस, ये नहीं उलमा होते, ये अल्लाह की किताब की तिलावत करने वाले होते हैं, ये अकाम सलाह करने वाले होते, कायम करते हैं नमाज को। कायम करना नमाज का, इस्टेब्लिश करना क्या है कि इंसान नमाज खुद भी पढ़े, दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलाए, दूसरों को भी इसकी तरफ तवज्जो कराए। व अनफकु मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन, और ये लोग खर्च करते हैं उसमें से जो अल्लाह ने इनको रिस्क दिया। एलानिया भी खर्च करते हैं, छुपे हुए भी खर्च करते हैं, यानी खर्च करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। आप देखें सहाबा कराम में से कौन से सहाबी ऐसे हैं जिनका नाम खर्च करने में बड़ा ही मशहूर हो? हज़रत उस्मान गनी कितना खर्च किया करते थे, और दूसरे सहाबा का भी आता है, एक बाग है उनके पास अल्लाह के रास्ते में दे दिया, किस तरह से वो अपनी कमाई का पूरा पूरा हिस्सा भी अल्लाह के रास्ते में दे देते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ है, तो काफिला आया, सारा का सारा काफिला, इतना बड़ा काफिला था, वो लदा हुआ था, वो ऊँट सारे लदे हुए थे, इतने थे कि एक मदीना के अंदर है और बीच में मिड में आ गया तो दूसरा बाहर है, इतना लंबा काफिला। उसके बावजूद वो सारा का सारा दे देते थे, तो उनको फिक्र नहीं होती थी, परवाह नहीं होती थी, गिन गिन के ना दो अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के ख़जानों पे नज़र रखते हुए दो, जब उसके ख़जानों पे नज़र रखोगे ना कितने बड़े हैं, तो फिर गिन गिन के नहीं देना होगा। देखें एक वाक्या आता है कि एक आदमी था, वो उसने उसकी कोई बीमारी थी जिसका इलाज शहद से मुमकिन था, तो वो कहीं गया, उसने वहाँ पर जाके मांगा शहद कि मुझे शहद दें। वो कहते हमारे पास तो नहीं है शहद, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा ताजिर है, उसका काफिला आ रहा है, वो ताजिर बड़ा अच्छा है और वो आपको शहद ज़रूर दे देगा। तो वो जो ज़रूरतमंद था उसने कहा ठीक है, वो शहर से बाहर निकला था कि काफिला जब आए तो उससे शहद मांग ले। आखिर काफिला आता हुआ नज़र आया, वो गया वहाँ पे और उस काफिले के अमीर के बारे में पूछा। लोगों ने कहा कि वो एक बड़े खूबसूरत सा और बड़ा भारौनक चेहरे वाला शख्स जो आपको नज़र आ रहा है ना, वो है जो इस काफिले का अमीर। वो उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, बोला कि मुझे एक बीमारी है, उसके इलाज के लिए मुझे थोड़े से शहद की ज़रूरत है, तो अगर आप मुझे थोड़ा सा शहद दे दें। जो वो अमीर काफिला थे उन्होंने फ़ौरन अपने ग़ुलाम से फरमाया, जिस ऊँट पर शहद के दो मटके लटके हुए उनमें से एक मटका, कुछ हिस्सा नहीं, एक मटका इस भाई को दे दो। गुलाम ने ये सुन के कहा, आका अगर एक मटका उसको दे दिया तो ऊंट पे वजन तो बराबर ही नहीं रहेगा, जाहिर है दोनों तरफ दो मटके लगे लटके हुए तो वो वजन नहीं बराबर रहेगा, तो फिर कैसे इसको एक मटका पूरा दे सकता। ये सुन के उन्होंने फरमाया, अच्छा फिर दोनों मटके दे दो इसको। ये सुन के गुलाम घबरा गया, बोला आका ये इतना वजन कैसे उठा के लेके जाएगा, मतलब दो दो मटके उठाने इसकी बस की बात कहाँ होगी। तो आका ने कहा, अच्छा फिर ऊंट भी इसको दे दो। गुलाम फौरन दौड़ा और वो ऊंट मटकों के साथ उसके हवाले कर दिया। वो जरूरतमंद शुक्रिया अदा करके और ऊंट की रस्सी थाम के चल गया और हैरान भी था, दिली दिल में सोचता भी जा रहा था, दुआएं भी दे रहा था कि ये कितना सखी आदमी है, मैंने थोड़ा सा शहद मांगा, इसने मुझे पूरे दो मटके दे दिए, साथ मुझे ऊंट भी दे दिया। इधर गुलाम जब अपने आका की खिदमत में हाजिर हुआ तो आका ने गुलाम से कहा कि जब मैंने तुमसे कहा इसे एक मटका दे दो तो तुम नहीं गए, दूसरा मटका देने के लिए कहा तुम फिर भी नहीं गए, फिर जब मैंने कहा कि ऊंट भी साथ दे दो तो तुम दौड़ते हुए चले गए, क्यों ऐसा तुमने क्यों किया। गुलाम ने जवाब दिया, आका जब मैंने ये कहा एक पूरा मटका दे दूं, एक पूरा मटका देने से ऊंट पे वजन बराबर नहीं रहेगा, तो आपने कहा दूसरा भी दे दो, जब मैंने कहा दूसरा भी दे दूंगा तो ये उठाएगा कैसे, तो आपने कहा ऊंट भी दे दो, अब मुझे तो डर पड़ गया कि अगर मैंने कोई एतराज किया तो आप मुझे भी उसके साथ जाने का हुक्म दे देंगे, इसलिए मैंने दौड़ लगा दी। इस पे आका ने कहा, अगर तुम इसके साथ चले जाते तो इस गुलामी से तो बेहतर था जिसमें तुम हो, तुम आज़ाद ही हो जाते तो ये तो और भी अच्छा होता। तो गुलाम ने कहा कि लेकिन मुझे आप जैसे आका कहाँ से मिलते, मैं आपकी गुलामी में रहने को आज़ादी से ज़्यादा पसंद करता हूँ। पता है आपको ये आका कौन थे? ये हज़रत उस्मान गनी थे। देखिए कितनी सखावत थी उनके अंदर, कैसे वो अल्लाह के रास्ते में देते थे, कैसे खर्च करते हुए उनको कोई इसका वो नहीं होता था, कोई दिल के अंदर ऐसा नहीं बात आती थी कि हाय मेरे पास कम हो जाएगा, हाय मुझे मुट्ठी बंद कर करके नहीं देते थे, थोड़ा ही देना पड़े, ज्यादा ना देना पड़ जाए कहीं। उनके हाथ कैसे खुले थे, अल्लाह ताला फरमाते हैं छुपे खुले खर्च करते हैं, खुले भी खर्च करना पड़े कोई नहीं, कभी वो भी बेहतर होता है, कभी छुपा के खर्च करने में बेहतरी होती है, जब लोगों को तरगीब दिलानी हो तभी खुला खर्च करें, यानी दिखा के खर्च करें, अदरवाइज नहीं। अगर हम ये सोच लेंगे ना मैं दे नहीं रही मैं ले रही हूं, तब देना आसान हो जाएगा, और अगर ये लगेगा कि मैं दे रही हूं तो मेरा खत्म हो जाएगा फिर मुश्किल होगा। इसलिए ये हमेशा सोचा करें मैं दे नहीं रही मैं ले रही हूं, इसलिए क्यों, ये मैं नहीं कह रही, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया यर्जूना तिजारत लन तबूर, वो ऐसी तिजारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह के ऐसे बैंक में, ऐसे आखरत के बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं जिसमें कोई खसारा नहीं होगा। यहाँ के तो बैंक भी लुट जाते हैं, आप अपने अकाउंट उसमें रखाए होते हैं वो बैंक जी ख़त्म हो गया, सब कुछ गया जनाब। अल्लाह का बैंक ऐसा नहीं, ये वो स्टॉक्स नहीं है जिसमें इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक बड़ा ऊपर जा रहा है उसके बाद एकदम गिरा तो कुछ भी ना रहा बाकी, ये वो नहीं है, इसमें गारंटीड है कि नुकसान नहीं होगा, लन तबूर हरगिज नहीं नुकसान होना, हरगिज नहीं नुकसान, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो फिर मिलने का जब इंसान को ये जहन में रहता ना कि मुझे मिल रहा है तो फिर उसके लिए खर्च करना मुश्किल ही नहीं रहता, बस इस वादे पे जिसको यकीन है, अल्लाह के वादों पर यकीन है कि नहीं, जिसको अल्लाह के वादों पर यकीन होगा वो कैसे फिर परेशान होगा कि हाय मैंने दे दिया तो क्या होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस ये उम्मीद रखते हैं एक तिजारत की, उनको पता है कि हम ऐसे ही ऐसी वैसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें कभी खसारा नहीं होगा, जो बैंकरप्ट नहीं होगा, जिसमें कभी नुकसान नहीं होगा, इतनी फायदेमंद तिजारत में ये दे रहे हैं लगा रहे हैं। जो क्या करते हैं, तिलावत करते हैं अल्लाह की किताब की, नमाज पढ़ते हैं, जो इन्फाक करते हैं उसमें से जो अल्लाह ने उनको अता किया, तो अब के बाद आपको गमगीन नहीं होना, परेशान नहीं होना कि हाय मैं इतने यहाँ पे घंटे लगा रही हूँ, मैं तो कुरान को सीखने में इतनी देर लगा रही हूँ, उतनी देर में लोगों ने देखो कितनी कमाइयाँ कर ली, वो जॉबों पे चले गए, उसने इतना कमा लिया, फलाने ने इतना कमा लिया, मैंने क्या किया, मैं बस क्लासें ही देती रहती हूँ, मैं तो बस यही करती रहती हूँ, मैं बस नमाज और यही करती रहती। नहीं, आप उस इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं, उस बिजनेस में लगा रहे हैं, आपने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया अपना टाइम, यहाँ पे कभी खसारा नहीं है। आपको इसका रिजल्ट जब पता चलेगा, अल्लाह ताला फरमाते लियुवफियहुम उजूरहुम, ये ऐसी तिजारत है सुभान अल्लाह के पूरा पूरा अल्लाह ताला इनको इनका अजर देगा। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, कौन सा बिजनेस दुनिया का या कौन सी इन्वेस्टमेंट ऐसी होगी जहाँ पे वो आपको कहीं 100% नफा मिलेगा और कभी खसारा हो ही नहीं सकता, 100% तो कहीं पे भी नहीं है। लेकिन अल्लाह का अकाउंट ऐसा है जिसमें 100% फायदा है और हो ही नहीं सकता कभी नुकसान। आप देखें अल्लाह ताला पूरा पूरा देगा उनको अजर वा यजीदा हुम मिन फदली, और अपने फजल से और भी अता करेगा। इंसान तो कितना दे देगा, उसके पास लिमिटेड होता है, उसमें से लिमिटेड दे सकता है, लेकिन अल्लाह ताला जब अता फरमाता है तो वो कैसे अता फरमाता है, वो उन जन्नतों की सूरत में अता फरमाता है जिसकी वुसत जमीन व आसमान के बराबर है, जिसकी जिसका अर्ज जमीन व आसमान के बराबर है। कहाँ हमारे 100, 200, 1000, 2000, चलो लाख डॉलर ही हो गए, बल तो ऐसा होता नहीं है, चलो लाख डॉलर ही हमने अल्लाह के रास्ते में दे दिए, को 2 लाख दे दिए होंगे, कहाँ वो जन्नत जिसकी जिसमें एक कोड़ा रखने की जगह, एक कोड़ा रखने की जगह जमीन और आसमान और जो कुछ उनमें है इससे ज्यादा कीमती है, इससे ज्यादा बेहतर, इतनी सी जगह उसके बादशाहत अल्लाह ताला अता फरमाते। ये है अल्लाह इतना मजीद देगा और उसकी रहमत हो जाना, उसकी रजा पा लेना, ये है अल्लाह ताला की तरफ से मजीद फजल। इन्नहु गफूरुन शकूर, इसलिए कि वो गफूर व शकूर है। अगर वो गफूर व शकूर ना हो तो कहाँ किसी का ऐसा हौसला हो सकता है कि छोटी सी चीज किसी ने दी तो उसके बदले में इतना बड़ा दे दे, भर भर के दे दे। वो गफूर भी है, वो तुम्हारी खताओं से दरगुजर कर देता है, जब तुम बख्शिश मांगते हो पूरी पूरी जिंदगी के बदामालियों को वाइप आउट कर देता है, और वो इतना शकूर है, इतना कदरदान है, उनको क्या तुम्हारी छोटी छोटी एफर्ट्स हैं, तुम्हारी कोई तिलावत हो गई, तुम्हारी कोई नमाज हो गई, तुम्हारा कोई इन्फाक हो गया, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना हो गया, कितनी छोटी चीजें हैं, वो तो वैसे भी तुम्हें करना चाहिए जबकि तुम्हारे पर अल्लाह ताला के इतने एहसान आते हैं और तुम अल्लाह के फकीर ही हो तो तुम्हें करना ही चाहिए, लेकिन वो फिर भी इसकी कदरदानी फरमाता है, अप्रिशिएट करता है, नहीं मेरे बंदे ने एफर्ट किया मेरे लिए, इतना अप्रिशिएट करता है, कोई नहीं इस तरह दुनिया में अप्रिशिएट कर सकता। हम सारी जिंदगी लोगों की शक्लों की तरफ देख रहे थे, उससे वो मेरी मुझे अप्रिशिएट कर ले, वो मुझे मान ले, वो मेरी तारीफ कर दे, वो अल्लाह की तरफ देखो, वो सबसे ज्यादा तुम्हारी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने वाला है। ये ऐसा ऐसी अप्रिसिएशन आपको कहाँ दुनिया में मिलेगी कि आपने एक छोटा सा किया और किसी ने कितना बढ़ा के इस चीज की कदरदानी की हो। लोग तो बल्कि क्या करते हैं कि जो कोई कर भी रहा हो तो उसको भी बिलिटल कर देते हैं कि ऐसा कौन सा तुमने इतनी ज्यादा कर दिया, ऐसी तुमने कौन सी बड़ी चीज कर दी। तो पूरा पूरा अजर भी देगा, फिर फरमाया ज्यादा भी देगा, और उसको अप्रिशिएट भी करता है, वो इसको मानता है कि मेरा बंदा मेरे लिए ये कोशिशें कर रहा है। सुभान अल्लाह, वो इतना मेहरबान है, वो थोड़े को बढ़ा देता है, वो खजूर के बराबर दिए हुए सदके को ओहद पहाड़ के बराबर उस दिन करने वाला है, वो इतना ज्यादा कदरदान है, ऐसा कदरदान तुम कहीं नहीं पाओगे। तो उस अल्लाह के लिए लगाओ, उसके साथ तिजारत कर लो, उसके साथ बिजनेस कर लो, उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करो, उसकी तिजारत में इन्वेस्ट करो, तो कोई और तुम्हें ऐसा नहीं दे सकता बदला। तो चाहे आप अपना टाइम लगाती हैं, चाहे आप अपनी कोई एफर्ट लगाती हैं, कभी इसके ऊपर ना दिल थोड़ा ना किया करें, याद रखें आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट में लगाया जहाँ पे खसारा नहीं होगा आपको कभी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमसे कबूल कर ले ये बैठना, ये सीखना, और अल्लाह ताला हमें वाकई वो उलमा बनाए, आलिमा बनाए, जिसके ज़रिए, जिस इल्म के ज़रिए हमारे अंदर खशियत इलाही पैदा हो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
या अय्युहा الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور